हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 30। सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के सात तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस जगत में सभी जीवात्माएं इस जगत में हैं बद्धात्माएं, क्योंकि वो जगत का भोग करना चाहते हैं। हम सभी के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है। तो होता ये है, इस यज्ञ करने की विधि के द्वारा हम सीखते हैं अपनी भोग की प्रवृत्ति को नियमित कैसे किया जाए, और दूसरा चीज है कैसे उच्चतर जीवन के लिए, श्रेयस के लिए हम अपने जीवन को जिए। आपने लगातार देखा था कि कैसे अपने इंद्रिय तृप्ति को रोक करके व्यक्ति अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता है। कोई धन का यज्ञ करता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है, कोई अपने प्राण अपान वायु का यज्ञ करता है, कोई अपने सुनने की इंद्रिय का यज्ञ करता है। इस प्रकार से व्यक्ति बहुत ही स्थूल भोग वासना से मुक्त होने का अभ्यास करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यज्ञ की विधि बनाई ही इसलिए गई है ताकि धीरे धीरे आत्मा काम वासना से मुक्त हो जाए। तो असुरों और देवताओं में अंतर क्या होता है, आज श्रील प्रभुपाद जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि असुरों के अंदर काम वासना है और उसको बढ़ाने की वो पूरी जोर तोर में लगे रहते हैं। देवताओं के हृदय में भी काम वासना है, लेकिन वो यज्ञमय जीवन जीते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हों, और धीरे धीरे उनकी जो काम वासना है वो प्रेम में परिवर्तित होने लगती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस यज्ञ के तरीके से व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पाप कर्म का अर्थ यही है, पाप का मूल धरातल यही है कि व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहता है बिना रोक टोक के। तो पाप कर्मों के ऐसे प्रभाव से व्यक्ति नष्ट मतलब बच जाता है यज्ञ की क्रिया संपादित करके, और या तो फिर आगे जाकर जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वो ब्रह्म में तादात्म्य करना चाहेगा, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहेगा, या फिर भक्तों की संगति प्राप्त करके भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकता है यज्ञ की प्रक्रिया से। 31 नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एक बहुत अद्भुत बात है, जब हम लोग यज्ञ करते हैं, अब अगर हमारे परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो हम लोग भक्ति की क्रियाओं को करते हैं जो क्रियाएं सीधे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। जैसे हम अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये क्रिया सीधे भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो इसलिए यज्ञ है ये। तो इस प्रक्रिया का करने से व्यक्ति अपने आप ही आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक कष्टों से मुक्ति पाता चला जाता है। इस जन्म में भी भोग की इच्छाओं की वजह से ही हमें दुख दिए जाते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा। तो अगर हम यज्ञमय जीवन जीते हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाली कार्यों में लगे रहते हैं, तो स्वतः हमको भौतिक जीवन में भी, भौतिक जीवन भी बड़ी सुचारू रूप से चलेगा। इसको भगवान ने पहले बताया था, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम वाप्स्यतः। जो व्यक्ति यज्ञ की प्रक्रिया को करता है, देवता उसके सब प्रकार की इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को, सब साधनों को भी पूर्ण करते हैं। रूपा जी एक जगह बताते भी हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, तो ये क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, तो व्यक्ति की भौतिक सुविधाएं भी बड़ी आसानी से पूर्ण होने लगती हैं, और भक्त लोग अपने जीवन में अनुभव इसको करते भी हैं। तात्पर्य अंततोगत और साथ साथ अगला जीवन भी सुधर जाता है। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। बहुगुणित का अर्थ क्या होता है? बहुगुणित का अर्थ ये होता है कि जैसे हम किसी को लोन देते हैं, 100 रुपये दिया या 1000 रुपये दिए, तो 100 ही रुपये वापस नहीं आता है, उसका कोई इंटरेस्ट होता है। तो वैसे इस जगत में व्यक्ति कुछ पाप करता है, तो उस पाप का जो फल है वो केवल उतना ही नहीं आता है, पाप का फल और भोगना पड़ता है। और एक और कारण होता है, जब व्यक्ति कोई पाप करता है तो पाप करने का संस्कार बन जाता है, तो वह पाप करने की प्रवृत्ति भी बन जाती है, तो उस पाप का बीज बन जाता है। तो इस प्रकार की वजह से हम लोग जगत में हैं। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। अज्ञान क्या? ये ना समझ पाना कि हम कौन हैं। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इंद्रियों के तर्पण में, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम कोई भी कार्य करने में, बुरा कार्य करने में चुकेंगे नहीं। जब व्यक्ति भक्त बन जाता है, तब उसको समझ में आता है, अरे कैसे मैं केवल अपने जीव की संतुष्टि के लिए एक प्राणी को मार करके खा जाता था, कितना उसको दुख हुआ करता होगा। लेकिन जब हम भक्त नहीं थे, तब हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, एक बार में भी ख्याल नहीं आता कि ये जो मांस है उसको हमारे, हमको हल्का सा काटा जाता है, कितना दर्द होता है। और ये अगर जिस मुर्गे के ऊपर मतलब छुरी चलाई गई होगी, कितना उसको दर्द हुआ होगा। तो ये अज्ञान अपने अस्तित्व के अनभिज्ञता के बारे में, कि हम हैं कौन। तो हमारा ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर हम अपने आप अपनी पहचान शरीर से करते हैं, तो कोई भी हिचक नहीं होगी हमें किसी भी प्रकार का पाप करने के लिए। इस बात को पाठ्यपुस्तक में बताया है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिया प्रीतमापनोति। लोग पागल हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इसलिए अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए कोई भी बुरा कार्य करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, ठीक है। और इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति, ये पाप पूर्ण जीवन, यही हमको बार बार एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से दूसरे जन्म में ऐसे लेके जा रहा है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। थोड़ा समझिए इस चीज को, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है। इस पर एक बड़ी अच्छी उदाहरण दिया जाता है, एक अंधा है या अंधा था, और वह स्टेडियम में है, और स्टेडियम से बाहर निकलने का एकमात्र द्वार वही है, एक ही द्वार है। तो अपने एक छड़ी रहती है जो अंधों के पास, उससे वो ठटकाता रहता है हर जगह, कौन सा द्वार है जिससे बाहर निकल जाए, कौन सा द्वार बाहर निकल जाए, ऐसे करके वो स्टेडियम में घूम रहा है। और जब दरवाजा बाहर निकलने का आता है, तब वो अपना हाथ खुजलाने लगता है और आगे बढ़ जाता है। तो आप समझ रहे हैं इस कथा का अर्थ ये है कि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अज्ञान में हैं, अंधे रहते हैं, और अन्य योनियां जो हैं, जो जानवर की योनियां हैं, उसमें ज्ञान प्राप्ति का तो कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन जब मानव जीवन प्राप्त होता है, जो द्वार है मृत्यु चक्र से निकलने का, उसमें हम थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, जिसको कंपेयर किया जा रहा है खुजलाने, हाथ की खुजली मिटाने से। और जो बहुमूल्य हमारे पास समय है, कह सकते हैं बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी है भगवान के धाम जाने की, वो छूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। कैसे? वेद हमको, वेद का जो कर्मकांड सेक्शन है, उसमें बोलते हैं आप धर्म करो, धर्म के नियमों का पालन करो, क्रियाओं का पालन करो, और उससे तुम्हें अर्थ मिलेगा, धन मिलेगा, और उससे तुम्हें काम मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और इस जगत में भी तुम्हें काफ़ी सुख मिलेगा। जब ऐसा करता रहता है व्यक्ति, तो उन क्रियाओं के द्वारा उसकी चेतना की शुद्धि होती है और धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि मैं काम से संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, फिर वो मोक्ष के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो अंततोगत्वा वेद का उद्देश्य यही है कि हम जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटें, और यही भगवद गीता का उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति वेदों के उद्देश्य को समझता है वो कर्मकांड और ज्ञानकांड में फंसता नहीं है, सीधे भगवान की भक्ति करता है। इसलिए ये जो भगवद गीता पढ़ रहा है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है वो वेदों के उद्देश्य को समझता है। और इस बात को भगवान गीता में बताते हैं 8वें अध्याय में, वेदेशु यज्ञेशु तपस्तु चैव दाने तो दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम ते ते तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम पेत चाद्यम। जो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कोई भी पुण्य प्राप्त होता है वो सब एक योगी को, एक भक्त को प्राप्त होता है, और साथ ही साथ योगी भगवान के परम धाम की प्राप्ति करता है। तो इसलिए अल्टीमेटली वेदों का उद्देश्य यही है कि हम भगवान की भक्ति करें। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है, अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो इस समझने का प्रयास कीजिए, जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसकी भौतिक आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूर्ण होने लगती हैं। और इसको आप देख भी सकते हैं कि इस्कॉन के भक्त कोई नौकरी नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली ब्रह्मचारी इत्यादि, लेकिन फिर भी उनका जीवन यापन बहुत आसानी से होता है। तो ये जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपादित करते हैं, भले ही हम इसको भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने आप आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो जब शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं फिर व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी छूट दी जाती है पवित्र विवाह के विधान के द्वारा। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। विवाह का उद्देश्य हमने पहले भी चर्चा किया था कि अनियमित अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना या प्रवृत्ति है ही समाज में, इसलिए उसको नियमित करने की व्यवस्था बताई गई है, ताकि अंततोगत्वा चाहे गृहस्थ आश्रम में भी हो, व्यक्ति को यज्ञ करने होते हैं और व्यक्ति को दायित्व लेना होता है और इस तरह से वो अपने आप को शुद्ध करके वो उच्चतर लोगों की ओर जाने के लिए प्रयास करता है, योग्य बन जाता है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यक्ति है। विभिन्न स्वर्गों में एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, जैसे कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है 4वीं-5वीं क्लास में, तो 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उस समय भी उसको अच्छे नंबर मिलेंगे और आगे की उसकी तैयारी हो जाती है, आगे की कक्षाओं में भी उसको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे अगर वो पढ़ता रहता है। तो मैं बोले एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा हम ऐसा एग्जैक्टली हम यज्ञ की विधि को ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन पढ़ना अपने आप में एक तप है जिससे हम आगे उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो भले ही इस समय वो करना ना अच्छा लगे, लेकिन हमारे लिए आगे का लाभ होगा, इसलिए व्यक्ति को बुद्धि के द्वारा निर्णय करके यज्ञ की प्रक्रिया को करना चाहिए और व्यक्ति इस प्रकार से कर्म बंधन से भी मुक्त रहता है। और ये भी सोचना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि पाप पूर्ण जीवन जो है वो हमको सुख नहीं दे सकता, नहीं तो जितने भी अपराधी और आतंकवादी होते हैं वो सब सुखी होने चाहिए, ऐसा होते नहीं है। वो पाप में जीवन कभी भी मानसिक और शारीरिक सुख हमको नहीं दे सकता। फिर दूसरे लोकों में, हाँ, विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ तो वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। जो अन्य यज्ञ होते हैं, हवन जो भी इत्यादि हो रहा है, कर्मकांड विभाग जो है वेदों का, उससे व्यक्ति स्वर्ग या और उच्चतर लोगों तक जा सकता है। लेकिन हमने गीता में आगे सुनेंगे कि ऊपर से लेकर जितने भी नीचे के लोग हैं सब में जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है तो फिर उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं आना पड़ता। और भगवान के धाम की प्राप्ति एकमात्र उसका साधन यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगें, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम पूजनम इत्यादि। तो जब इन क्रियाओं में लगते हैं तो स्वतः ही यज्ञ की जो क्रिया है वो संपादित हो जाती है। यज्ञ का नाम ही है यज्ञो वा विष्णु, हमने सुना था भगवान विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं। तो अलग से एक भक्त को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी एक भक्त ने मुझसे पूछा कि आप लोग हवन करते हो, हमने कहा हम हवन करते हैं लेकिन जो हमारा हवन है वो थोड़ा अलग प्रकार का है और वो है हरे कृष्ण मंत्र का जप, जिसमें हमारी जीभ जो है वो हवन का चम्मच है, हरे कृष्ण मंत्र वो घी है, कान हमारे यज्ञ कुंड है और इसमें हम आहुति देते रहते हैं, भगवान हृदय में बैठ कर उसको स्वीकार करते रहते हैं। तो इसी यज्ञ से हमारी सारी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और आध्यात्मिक जगत की ओर जाने का रास्ता भी प्रशस्त हो जाता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात बुद्धि में लीन हैं अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। थोड़ा समझिए, वेदों में अलग अलग चेतना के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ की विधान किया गया है। हमने पढ़ा था कुछ समय पहले द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। तो यानी कि नहीं, अगले श्लोक में ऐसा बताया जाएगा। तो कोई व्यक्ति द्रव्य यज्ञ कर रहा है तो उसकी चेतना का कर्म, उसकी चेतना में बहुत कर्मात्मक है, उसे कर्म करने की बहुत प्रवृत्ति है, तो उससे उसके पास कुछ द्रव्य इकट्ठा होगा और उसका वो आहुति भगवान के लिए देगा। तो उससे श्रेष्ठ है व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करे कि वो है कौन। तो जो व्यक्ति कर्मात्मक मन वाला है, कर्म करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, उसको आप बोला जाएगा कि ज्ञान का अनुशीलन करो, दार्शनिक चिंतन करो, तो उसकी उतनी रुचि नहीं होगी। तो इसलिए जब व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान का उदय होता है और फिर वो ज्ञान यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। अपने जीवन में भी हम देखते हैं किस प्रकार से हम लोगों को पहले भगवद गीता समझ में नहीं आती थी, लेकिन भगवान के लिए प्रैक्टिकल सेवा करते करते, हरिनाम जप करते करते धीरे धीरे भगवद गीता की बातें आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए प्रारंभ में, भक्ति की शुरुआत में, कि एकदम सुबह से लेकर शाम तक भगवद गीता ही पढ़ते रहो, भागवतम ही पढ़ते रहो, तो भले ही वो सिद्धांतिक रूप से उसको पढ़ ले लेकिन उसको हृदय में आत्मसात नहीं कर पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना सीखें। और एक बात में आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यज्ञ जो हैं वो कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिन क्रियाओं को हम करते हैं उनको कृष्ण से जोड़ना, भगवान विष्णु से जोड़ना, ये यज्ञ कहलाता है। यानी कि आप देखें अगर कि जो तरीका है बहुत बुद्धिमानी वाला तरीका है। हमें अपनी क्रियाओं को परिवर्तित नहीं करना है, केवल क्रियाओं को भगवान से जोड़ना है। ये बहुत आसान है एक्चुअली अगर आप देखा जाए, लेकिन लाभ बहुत अधिक है। तो इसलिए व्यक्ति को यज्ञमय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यानी कि जो भी कर्म यज्ञ व्यक्ति कर रहा है उसके द्वारा उसके हृदय में ये ज्ञान उदित होना चाहिए कि वो शरीर से भिन्न एक व्यक्ति है। और जब ये ज्ञान उदित होगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो यज्ञ के फलों को सच्चे रूप से भोग पा रहा है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सकें। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति एकदम से भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी भोग की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। इसलिए विभिन्न यज्ञों का विधान के द्वारा धीरे धीरे भोग की प्रवृत्ति को नियमित किया जाता है, उसके हृदय को शुद्ध किया जाता है। जब हृदय शुद्ध होता है तब वो भक्ति की बातों को समझ पाएगा। और आप अब देखेंगे, जब आप लोगों को गीता के बारे में बताएंगे तो हर व्यक्ति भगवद गीता को तुरंत ग्रहण नहीं कर पाता है, तो इस कारण यही है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति को भगवान की सेवा उसके कर्मों को समर्पित करने के द्वारा लगाई जाए और फिर धीरे धीरे वो भगवान के बारे में समझ पाएगा। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली थी। कुछ लोगों की श्रद्धा देवताओं में होगी, इस पर अलग अलग गुणों के अनुसार, तो उस प्रकार के वो यज्ञ करते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यानी कि यज्ञ करने का उद्देश्य हृदय की शुद्धि होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर रहा है और भौतिक लाभ के लिए यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ वीर भौतिक ही रह जाते हैं। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी कि ये जान लेना कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, मैं उनका शाश्वत दास हूँ, ये दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुँचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि व्यक्ति यज्ञ कर रहा है लेकिन उसका एक आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हृदय में नहीं हो रहा कि वो कृष्ण का अंश है, तो उसको प्रायः इस यज्ञ से भौतिक लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो यज्ञ करते हुए इसकी भावना ये है कि मैं कृष्ण का नित्य अंश हूँ, तो वही कार्य पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं प्रभुपाद, चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञानकांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। यानी कि कर्मकांड में उद्देश्य रहेगा कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करें, ज्ञानकांड में उद्देश्य रहेगा कि हम ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करें, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जब व्यक्ति समझेगा कि वो कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा में लगेगा। इसलिए वस्तुतः सारे भक्त जो भगवान की भक्ति में लगे हैं वो बहुत श्रेष्ठ चेतना के व्यक्ति हैं, क्योंकि बड़े स्वभावता बड़ी आसानी से भगवद्गीता को सुन करके उन्हें स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में वो लगे हुए हैं। ये भावना या ये चेतना इतनी जल्दी आती नहीं है, लेकिन यदि भाग्यवश भक्तों की कृपावश अगर हम हरे कृष्ण मंत्र के जप करने लग जाएं तो बहुत जल्दी हम भगवद गीता को स्वीकार कर लेंगे और इस बहुत जल्दी इसके द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो अब ज्ञान प्राप्ति का तरीका क्या है? जैसे हमें बताया गया कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तो अगर सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में चर्चा भगवान करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।